गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक कार्यक्रम एक गीत सौ अफसाने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है, कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। फिल्म रजिया सुल्तान की मशहूर गजल, कब्बन मिर्जा की अनोखी आवाज, खयाम का ठहराव भरा सुरीला संगीत और निदा फाजली के पुरसर बोल। कैसे बनी ये गजल, क्यों देश भर के 50 गायक आए इस गजल के लिए ऑडिशन टेस्ट देने, फिर कैसे चुनी गई कब्बन मिर्जा की आवाज, क्यों रिकॉर्डिंग के दिन रिकॉर्डिंग की सेटिंग बदली गई, कैसी रही निदा फाजली और कमाल अमरोही की मीटिंग इस गजल के संदर्भ में, ये सब जानिए आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शबनम खानम।
तेरा हिज्र मेरा नसीब है, कमाल अमरोही निर्देशित 1983 की फिल्म रजिया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी, पर हेमा मालिनी धर्मेंद्र अभिनीत इस फिल्म को इसकी पटकथा, संवाद और निर्देशन के लिए आज भी याद किया जाता है, और याद किया जाता है इस फिल्म के सुमधुर गीतों और गजलों को भी। खयाम द्वारा संगीतबद्ध फिल्म के गीतों को लिखने का भार जानिसार अख्तर साहब को सौंपा गया था, पर सभी गीत पूरे होने से पहले ही वो चल बसे, जिस वजह से फिल्म के शेष दो गीत शायर और गीतकार निदा फाजली से लिखवाए गए। लता मंगेशकर का गाया ऐ दिले नादान सर्वाधिक लोकप्रिय गीत रहा इस फिल्म का, जो कि खयाम साहब की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और लता जी के पसंदीदा गीतों में भी इसका शुमार होता है। लता जी की ही आवाज़ में जलता है बदन भी काफ़ी सुना गया, पर ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी गज़ल ज़्यादा चर्चा में नहीं रही। अन्य दो गीत हरियाला बनना आया रे और ए खुदा शुक्र तेरा भी बहुत कम ही सुना गया, पर इस फिल्म में दो गज़लें ऐसी थीं जिनमें एक अलग ही बात थी। अलग बात इसलिए कि इनके गायक थे कब्बन मिर्ज़ा, जिन्हें उस समय कोई नहीं जानता था, और उनकी अलग हटकर आवाज़ ने इन दो गज़लों को एक अलग ही जामा पहनाया। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे और तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है गाकर कब्बन मिर्ज़ा ने रजिया सुल्तान के म्यूज़िक एल्बम को 4 लगाया। निदा फाजली द्वारा लिखे फिल्म के दो गीत थे हरियाला बनना आया रे और तेरा हिज्र ही मेरा नसीब है। अब आते हैं कब्बन मिर्ज़ा साहब पर। आखिर कौन थे ये जनाब, इनकी आवाज़ तो इससे पहले किसी ने नहीं सुनी और न ही इसके बाद फिर कभी सुनाई दी। कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। इंटरनेट पर इनके बारे में बस यही लिखा गया है कि ये विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। इसलिए कब्बन मिर्ज़ा के जीवन से जुड़ी और भी कुछ बातें मालूम करने के लिए जब हमने विविध भारती के वर्तमान लोकप्रिय उद्घोषक यूनुस खान का सहारा लिया तो कब्बन साहब के बारे में कुछ और बातें जानने को मिली। कब्बन मिर्ज़ा का ताल्लुक लखनऊ से था, वो विविध भारती में उद्घोषक नहीं बल्कि प्रोग्राम असिस्टेंट शामिल हुए थे और आवाज़ अच्छी होने की वजह से प्रोग्राम भी किया करते थे। संगीत सरिता से वे शुरुआत से ही जुड़े रहे थे, मुहर्रम में मरसिए वगैरह गाते थे। विविध भारती में उनका सबसे अहम योगदान रहा संगीत सरिता का शुरुआती स्वरूप और उसे लोकप्रियता देना, जिसमें पहले किसी राग के बारे में बताया जाता, फिर उसका चलन और फिर उस पर आधारित शास्त्रीय और फिल्मी रचना। ये क्लासिकल स्वरूप उन्होंने ही बनाया जो आज तक बरकरार है। वो 80 के दशक के दौरान विविध भारती से रिटायर हुए और फिर मुंबई के उपनगर मुंब्रा में रहने लगे। उनके एक या शायद दोनों बेटे सऊदी अरब के एक मशहूर रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं। इंटरनेट पर उनका जन्म 1937-38 बताया गया है। आखिरी दिनों में उन्हें गले का कैंसर हो गया था और कम उम्र में ही उनका इंतकाल हुआ। अब सवाल ये है कि फिल्म रजिया सुल्तान के इन दोनों गजलों को गाने के लिए कब्बन मिर्जा कैसे चुने गए। रजिया सुल्तान फिल्म दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान के जीवन पर आधारित थी और इसमें शामिल हैं उनके एबिसिनियन गुलाम जमालुद्दीन याकूत यानी धर्मेंद्र द्वारा निभाया चरित्र, जिसके साथ रजिया सुल्तान के प्रेम संबंध होने की कहानी चली थी। जमाल एक बहुत बड़ा सिपा सालार है जो जब भी कभी वक्त मिलता है थोड़ा गा लेता है अपनी मस्ती में, पर वो कोई गायक नहीं है। ऐसे किरदार के पार्श्व गायन के लिए कमाल अमरोही ने खयाम के सामने अपनी फरमाइश रख दी कि उन्हें ये दो गजलें किसी ऐसे गायक से गवानी है जो गायक नहीं है पर थोड़ा बहुत गा लेता है। ऐसे में खयाम साहब के लिए ये बहुत ही कठिन बात हो गई कि उन्हें कोई इस तरह का गायक कैसे मिलेगा। अब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से 50 से भी ज़्यादा लोग आए और सब आवाज़ों में ये हुआ कि लगा कि सभी मंझे हुए गायक हैं। किसी की भी आवाज़ में वो बात नज़र नहीं आई जिसकी कमाल अमरोही को तलाश थी। ऐसे ही गब्बर मिर्ज़ा भी आए अपनी आवाज़ को आजमाने। खयाम, उनकी पत्नी और गायिका जगजीत कौर और कमाल अमरोही तीनों ने ही उन्हें सुना। जब गब्बर मिर्ज़ा से ये पूछा गया कि उन्होंने कहाँ से गायन सीखा तो उनका जवाब था कि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं। किस तरह के गाने आप गा सकते हैं पूछने पर कब्बन साहब लोकगीत सुनाते चले जा रहे थे। वो तीनों मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उनकी ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो गायक न हो पर गज़ल गा सके। अतः कब्बन मिर्ज़ा भी रिजेक्ट हो गए। पर अगली सुबह कमाल साहब का खयाम साहब को टेलीफोन आया कि आप फ्री हैं तो अभी के अभी तशरीफ़ लाएं। नाश्ता उनके साथ हुआ। नाश्ता हुआ तो कमाल साहब कहने लगे कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। ये जो आवाज़ है जो हमने कल सुनी कब्बन मिर्ज़ा की, यही वो आवाज़ है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। खयाम चौंक कर बोले, कमाल साहब लेकिन उनको गाना तो आता ही नहीं। तो कमाल अमरोही ने खयाम का हाथ पकड़ कर बोला, खयाम साहब आप मेरे केवल मौसिकार ही नहीं हैं, आप तो मेरे दोस्त भी हैं। प्लीज़ आपको मेरे लिए ये करना है, मुझे इन्हीं की आवाज़ चाहिए। फिर क्या था, शुरू हुई कब्बन मिर्ज़ा की संगीत शिक्षा। खयाम साहब ने उन्हें 3-4 महीने स्वर और ताल का ज्ञान दिलवाया और उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अक्सर ये होता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग करवाता है अपने रिकॉर्डर्स से और असिस्टेंट जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा संभालते हैं। पर उस दिन क्योंकि कब्बन मिर्ज़ा नए थे, गा नहीं पा रहे थे, इसलिए खयाम साहब ने जगजीत कौर को भेजा रिकॉर्डिंग पर और असिस्टेंट को भी अंदर भेजा और ख़ुद कंडक्ट किया। इस तरह से रिकॉर्ड हुआ कब्बन मिर्ज़ा का गाया तेरा हिज्र मेरा नसीब है। शायर और गीतकार निदा फाजली के लिए भी ये गज़ल उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उन्हीं के शब्दों में देखिए पटना बिहार अजीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अजीमाबादी। उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का इख्तियार ज़िंदगी में होता नहीं है। जहाँ आप पैदा हुए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, और वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस शहर में वो आपका शहर। मेरे साथ भी यही हुआ कि बिना पूछे पैदा कर दिया गया और मैं ये तमाम बोझ लिए गधे की तरह ज़िंदगी के सफ़र में घूमता रहा। जब घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा। ये भी बेवकूफ़ी थी। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया है। उस जमाने में धर्मवीर भारती थे, उनके यहाँ धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर ब्लिट्स में लिखना शुरू कर दिया। एक दिन बेघर एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज हर उस जगह पर रखा मिला जहाँ वो काम किया करते थे, कहीं धर्मयुग में, कहीं ब्लिट्स में, तो कहीं किसी रेडियो स्टेशन में। और उस सभी मैसेजेस में एक कॉमन बात लिखी मिली, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे आकर मिलिए, मुझे आपसे कुछ काम लेना है। कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा आखिर कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है। मैं उनसे मिलने चला गया। कमाल साहब मिले करीब 2 बजे। वो स्टाइलिश आदमी थे। वो एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं बोलते थे और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं वह भाषा बम्बई आकर भूल गया। मैंने कहा, कमाल साहब आदावर्स है, मेरा नाम निदा फाजली है। बोले, तशरीफ़ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया है कि मुझे एक मुकम्मल शायर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं। बोले, जी मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ साहब, आप बताइए कि कैसा गाना है, क्या लिखना है। बोले कि इससे पहले कि आप गाना लिखें, एक बात मैं जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इल्मी शायरी अलग होती है और फिल्मी शायरी अलग होती है, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत ज़रूरी है। जानेसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा कि मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके मिजाज का कुछ लिख सकूँ। तो उन्होंने सिचुएशन सुनाई, अपनी ज़ुबान में सुनाई, तो थोड़ी देर के लिए मैं हिल सा गया। कहने लगे, हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई है जहाँ मलिकाए आलिया रज़िया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलिया कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उनके असिस्टेंट ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफ़ेद घोड़े पर काले लिबास पहने आ रही हैं और आलिया कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने आखिर के 2 गीत उस फिल्म के लिए लिखे। तेरा हिजर मेरा नसीब है गज़ल में कुछ ऐसी बात है कि जिसे एक बार सुनने के बाद एक और बार सुनने का मन होता है। गब्बर मिर्ज़ा की आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण है जो सीधे दिल में उतर जाता है। ये उपहास ही है कि ऐसी मोहक आवाज़ के धनी गब्बर मिर्ज़ा गले के कैंसर से आक्रांत होकर इस दुनिया से चल बसे। पर जैसा कि इस गज़ल की दूसरी लाइन में कहा गया कि मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, वैसे ही गब्बर मिर्ज़ा भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी गाई हुई रज़िया सुल्तान की इन 2 गज़लों ने उनकी आवाज़ को अमर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह से एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी होती है पूरी। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अपनी राय अवश्य हमें बताएं। आपको बता दें कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस स्तंभ के लिए शोध और आलेख तैयार किया सुजय चटर्जी ने, और अब इस स्तंभ की प्रस्तुतकर्ता संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी शबनम खानम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।